तकफीरी आतंकवाद।
प्रिय श्रोताओं, साप्ताहिक कार्यक्रम तकफीरी आतंकवाद की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। कार्यक्रम में हम जिहाद और ईमान के बारे में आतंकवादी गुट दाइश की गलत परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे।
श्रोताओं, पिछले कार्यक्रम में हमने दाइश की विचारधारा के आधार के बारे में चर्चा की थी। हमने संक्षेप में जिहाद और ईमान जैसे इस्लामी विषयों के बारे में दाइश की गलत व्याख्या के बारे में चर्चा की थी। इसी विषय को हम आज और आगे बढ़ाते हैं। इस्लामी शिक्षाओं के हिसाब से जो भी व्यक्ति मौखिक रूप से कलमा पढ़ता है वो मुसलमान कहलाता है। इसका दूसरा चरण है ईमान, जो व्यवहार पर आधारित है। कोई भी व्यक्ति कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है और इस्लामी शिक्षाओं का जब वो व्यवहारिक रूप से पालन करता है तो मोमिन कहलाता है। मुसलमान और ईमान की यही परिभाषा है, किंतु वहाबी विचारधारा में इसको दूसरे ढंग से परिभाषित किया गया है। वहाबी विचारधारा विशेषकर दाएशी आतंकवादियों के निकट मुसलमान और मोमिन की परिभाषा बिल्कुल अलग है। जो भी व्यक्ति वहाबी विचारधारा को स्वीकार नहीं करता वो मुसलमान नहीं बल्कि काफिर है और उसकी हत्या की जा सकती है। वर्तमान समय में जितने भी आतंकवादी गुट इस्लाम के नाम पर मार काट कर रहे हैं वे सभी वहाबी विचारधारा से प्रभावित हैं। वे लोग सलफ़ी मुफ्तियों के फतों को आधार मानते हैं। सलफ़ी या वहाबी मुफ्तियों ने जिहाद को अपने हिसाब से परिभाषित किया है और वे उसी का प्रचार भी करते हैं। जो व्यक्ति जिहाद करता है उसे मुजाहिद कहा जाता है। वहाबियों का मानना है कि इस्लाम को ज्ञान से पहले मुजाहिद की ज़रूरत है। उनके हिसाब से जिहाद ज्ञान प्राप्ति से भी पहले ज़रूरी है।
जिहाद अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है संघर्ष। वहाबी विचारधारा में मारकाट, हत्या और खून खराबे को जिहाद कहा जाता है। वहाबी विचारधारा के लोग धर्म भ्रष्टों, मिथ्याचारियों और शिया मुसलमानों को अपना शत्रु मानते हैं और उनके विरुद्ध जिहाद करना उनके निकट आवश्यक है। वहाबियों के निकट ऐसे लोगों की हत्या करना पुण्य है और इससे स्वर्ग की प्राप्ति संभव है। वर्तमान समय में दाइश सहित वहाबी विचारधारा से प्रभावित अतिवादी गुट इराक और सीरिया में जो कुछ कर रहे हैं वो इसी का परिणाम है। उनकी ये सोच मुसलमानों के दो प्रमुख संप्रदायों सुन्नी और शिया मुसलमानों की धार्मिक विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। वहाबी विचारधारा से प्रभावित अतिवादी गुट अपने अतिरिक्त दूसरों को ईश्वर का शत्रु बताकर उनका जनसंहार कर रहे हैं और उनकी धन संपत्ति लूट रहे हैं। मुसलमान धर्मगुरुओं का मानना है कि सशस्त्र संघर्ष का नंबर बहुत बाद में आता है, पहले चरण में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती।
पवित्र कुरान के अनुसार लोगों को ईश्वर का निमंत्रण देने के लिए केवल सशस्त्र संघर्ष की आवश्यकता नहीं है बल्कि इसके कई मार्ग हैं। उदाहरण स्वरूप सूरह नहल की आयत संख्या 125 में कहा गया है कि लोगों को अपने रब के मार्ग की ओर तत्वदर्शिता और सदुपदेश के साथ बुलाओ और उनसे ऐसे ढंग से बहस करो कि वो जो उत्तम हो। इससे पता चलता है कि लोगों को ईश्वर का निमंत्रण देने के लिए बहुत से रास्ते हैं। इसी के साथ सूरह बकरा की आयत नंबर 256 में कहा गया है कि धर्म को स्वीकार करने में किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दाइश ने जिहाद की जो परिभाषा की है वो इस्लामी संप्रदायों में से किसी भी संप्रदाय की विचारधारा से मेल नहीं खाती।
पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पवित्र कथनों में मिलता है कि निकट शत्रुओं से तात्पर्य मदीने के निकटवर्ती यहूदी हैं जिनमें बनी कुरैज़ा, बनी नुज़ैर और खैबर वाले शामिल हैं। पवित्र कुरान में मुनाफिकों या मिथ्याचारियों को भी खुले हुए दुश्मन के रूप में नहीं पेश किया गया है, जबकि उनसे इस्लाम को बहुत नुकसान पहुँचा है। वास्तविकता यह है कि मुसलमानों के मुख्य शत्रु ज़ायोनी हैं, जिन्होंने मुसलमानों की भूमियों पर अवैध ढंग से कब्जा कर रखा है। ज़ायोनियों ने फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सीरिया और लेबनान के भूभागों पर नियंत्रण किया है। विशेष बात यह है कि इस्लाम के नाम पर रक्तपात करने वाला आतंकी गुट दाइश मुसलमानों के वास्तविक शत्रु ज़ायोनी शासन के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करता। कार्यवाही तो बहुत दूर की बात, वो ज़ायोनियों के विरुद्ध कोई बयान तक जारी नहीं करता, जबकि मुसलमानों को काफिर बताकर उनका जनसंहार करता रहता है।
दाइश ने सूरह बकरा की आयत संख्या 191 और सूरह मोहम्मद की 4 आयतों की मनमानी व्याख्या की है और इस व्याख्या के आधार पर वो मुसलमानों का खुलकर जनसंहार कर रहा है। विशेष बात यह है कि किसी भी मुसलमान व्याख्याकार ने इन आयतों की व्याख्या उस प्रकार से नहीं की है जिस प्रकार से दाइश ने की है। यही कारण है कि मुसलमान व्याख्याकार दाइश की इस व्याख्या को स्वीकार नहीं करते। पवित्र कुरान के व्याख्याकारों का कहना है कि ये आयतें मुसलमानों और मक्का के काफिरों के बीच युद्ध के समय नाजिल हुई थीं, जिनमें उन काफिरों के विरुद्ध जिहाद की बात कही गई थी जो मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध की बात करते हैं।
अतिवादी तकफीरी विचारधारा के अनुसार जिहाद एक ऐसा धार्मिक कार्य है जिसे भुला दिया गया है, अतः इसे पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। भ्रष्ट वहाबी विचारधारा के अनुयायियों का कहना है कि हर मुसलमान को जिहाद करना चाहिए और जो भी ऐसा नहीं करता वो काफिर है, जिसकी हत्या की जानी चाहिए। इस्लाम के बारे में आतंकवादी वहाबी विचारधारा के धर्मगुरुओं की जानकारी बहुत सीमित है। अपनी इसी अधूरी जानकारी के आधार पर वे आए दिन फतवे देते रहते हैं। वे जिस प्रकार के फतवे देते हैं उनको सुन्नी और शिया मुसलमानों में से कोई भी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ये किसी भी पंथ की शिक्षाओं से मेल नहीं खाते। इस्लाम के नाम पर आतंकवादी कार्रवाइयां करने वाले अतिवादी गुट स्वेच्छा से कुरान की आयतों की व्याख्या करके अपनी हिंसक कार्रवाइयों का औचित्य दर्शाते हैं। खेद की बात यह है कि तकफीरी विचारधारा से प्रभावित आतंकवादी गुट अपने गैर इस्लामी कृत्यों को इस्लामिक कर्म के रूप में दर्शाते हैं, जो बिल्कुल गलत है।
जैसा कि हमने आपको बताया कि तकफीरी आतंकवादियों ने जिस प्रकार से पवित्र कुरान की बहुत सी आयतों की मनमाने ढंग से व्याख्या की है, उसी प्रकार से उन्होंने पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पवित्र कथनों की भी अपनी इच्छानुसार व्याख्याएं की हैं। यहाँ पर हम दाइश द्वारा पैगम्बर इस्लाम के कथन की गई व्याख्या का उल्लेख करेंगे, जिसके आधार पर उन्होंने पूरे विश्व विशेषकर सीरिया में उत्पात मचा रखा है।
इस्लामी शिक्षाओं में संसार की समाप्ति का उल्लेख मिलता है, जिसे आखिरुज़्ज़मान के नाम से याद किया गया है। आखिरुज़्ज़मान वास्तव में प्रलय आने से पहले के काल को कहा गया है। ये काल पैगम्बर इस्लाम के शुभ जन्म से आरंभ होता है और प्रलय आने तक जारी रहेगा। इस काल में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटेंगी, जिनकी भविष्यवाणी पैगम्बर इस्लाम ने भी की है। इस्लामी शिक्षाओं के हिसाब से इन घटनाओं का घटना निश्चित है।
अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं कि भ्रष्ट अतिवादी विचारधारा के अनुयायी दाइश ने आयतों और पैगम्बर इस्लाम के कथनों की गलत और मनमानी व्याख्या की है। उदाहरण स्वरूप, कुख्यात आतंकवादी गुट दाइश की प्रचारिक पत्रिका का नाम है दाबिक। दाइश ने अपनी प्रचारिक पत्रिका का नाम दाबिक अकारण नहीं रखा, बल्कि उनका कहना है कि हमने ये नाम हदीस के आधार पर रखा है। दाबिक वास्तव में सीरिया के हलब प्रांत में स्थित एक छोटा सा नगर है। रणनीतिक दृष्टि से दाबिक नगर का कोई विशेष महत्व नहीं है, किंतु इसके बावजूद दाइश के आतंकवादियों ने भारी खून खराबा करके दाबिक पर नियंत्रण कर लिया। बड़ी संख्या में नरसंहार करने के बाद दाइश ने दाबिक पर कब्जा करके खुशियां मनाई और एक दूसरे को बधाई दी।
दाबिक पर नियंत्रण करके अपनी विजय की कार्रवाई के बारे में दाइश ने पैगम्बर इस्लाम का एक कथन प्रस्तुत किया है। दाइश का कहना है कि यह हदीस मुसलमानों की विश्वसनीय पुस्तकों में से एक सही मुस्लिम में है। यह हदीस इस प्रकार है, प्रलय उस समय तक नहीं आ सकता जब तक रूमी अर्थात रोमवासी दाबिक पर हमला नहीं करते। इस हमले के बाद मदीने के युवाओं की एक सेना दाबिक आएगी जो उनका मुकाबला करेगी। युद्ध में मुसलमानों के एक तिहाई सैनिक मारे जाएंगे। इसमें मारे जाने वाले ईश्वर के निकट सबसे अच्छे शहीद होंगे। बाकी बचे लोग रूमियों पर विजय प्राप्त करेंगे। वे लोग ही कुस्तुनतुनिया को आज़ाद करवाएंगे। इसके बाद हजरत ईसा धरती पर पधारेंगे। जब ईश्वर के शत्रु उन्हें देखेंगे तो वे वैसे ही हो जाएंगे जैसे नमक पानी में घुल जाता है। इस हदीस के अनुसार प्रलय से पहले मुसलमानों की रोमियों से जंग होगी। इस जंग में काफ़ी नुकसान उठाने के बाद अंततः मुसलमान दाबिक पर कब्जा करने में सफल होंगे। विशेष बात यह है कि दाइश के अनुसार हदीस में जिस मुसलमान गुट का उल्लेख किया गया है वह हम ही हैं, क्योंकि हमने ही दाबिक को स्वतंत्र कराया है।
दाइश द्वारा पेश की गई हदीस पर यदि ध्यान दिया जाए तो पता चलेगा कि इसमें खुला हुआ विरोधाभास पाया जाता है। पहली बात तो यह है कि रोमी या रोमन वासियों ने सीरिया के दाबिक नगर पर कोई आक्रमण नहीं किया। दूसरी बात यह कि जिन लोगों ने दाबिक पर हमला करके कब्जा किया वे मदीना से नहीं आए। तीसरी बात यह कि हजरत ईसा के धरती पर पधारने की कहीं से कोई सूचना नहीं है। इन बातों से सिद्ध होता है कि भ्रष्ट विचारधारा से प्रभावित आतंकवादी गुट दाइश पैगम्बर इस्लाम के कथनों की मनमानी व्याख्या करके इस्लाम के नाम पर पूरी दुनिया में आतंक फैलाए हुए हैं। विशेष बात यह है कि पश्चिमी संचार माध्यम बड़ी प्रमुखता से इन आतंकवादी गुटों के कुकृत्यों पर इस्लाम का लेबल लगाने में व्यस्त हैं।